શ્રી દ્રવ દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 6, 9, 10 થી 14 અને 15 થી 59 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 262.
બહુ નામી વિદ્વાન હોવા પર ઉસકી જો પત્ની થી ભારતી દેવી વો ભી બડી વિદુષી થી. તો શંકરાચાર્ય કો માલુમ હુઆ કે વેદાંત કા બહુત બડા વિદ્વાન હૈ તો વો ઉનકો ઘર જાને કે લિયે નિકલા નિકલે કે ફલાણે ફલાણે એરિયા મેં વો રહેતે હૈ. તો કહે કે જો પુરાણા બનારસ હૈ વહાં ગલી કુચી બહુત હૈ બહુત ફાકડે રસ્તે હૈ ઓર પુરાણા સિટી હૈ ને વો તો ફાકડે તો ઉન જમાને મેં તો આબાદી કમ હોગી એટલે રસ્તે ભી એસે હી આંકડે હૈ. તો કુછ ગલી કુચી મેં વો પૂછને લગે કોઈ મિસમણ કા ઘર કા આયા. તો કિસીને એસે ઉસકા ઠિકાના બતાયા કે દેખીએ યહાં તો ગલિયાં તો બહુત હૈ લેકિન જિસ ગલી મેં તોતા ભી સંસ્કૃત મેં બાત કરતા હો તો સમજ લેના કે વો મિશ્ર મંડન કા વાલી ગલી હૈ. જમાને મેં તોતા કો પિંજરે મેં અપને ઘર મેં રખતે હોંગે પર તોતા કા તો એસા હી હોતા હૈ કે જો વહાં જો ચર્ચા ચલી વો ઉસકી નકલ કરે કોઈ બોલતા હૈ ઉસકી નકલ કરતા હૈ તોતા. તો કે જિસ ગલી મેં તોતા લોગ ભી સંસ્કૃત મેં બાત કરતે હો તો સમજ લેના કોઈ મિશ્ર મંડન કી ઘર વાલી ગલી હૈ. એસા ઠિકાના દિયા થા. એસે જિસ છોટે ગાંવ મેં દ્રવગુણ પર્યાય કી ચર્ચા ચલતી હો રાસ્તે મેં ખાતે પીતે હરતે ફરતે સમજ લેના કે સોનગઢ હૈ એ કાંજી સ્વામી વાલા સોનગઢ હૈ એસા સમજ લેના. એસી એક કહાવત હો ગઈ થી એસા માહોલ થા ગુરુદેવ કે જમાને મેં માહોલ એસા થા. જીવ ઓર પુદગલ કી ચર્ચા ચલતી રહે જબકિ પુદગલ શબ્દ જૈન સંપ્રદાય કે અલાવા કઈ પ્રસિદ્ધ નહીં હૈ. તત્વ ચર્ચા કા વિષય તાત્વિક ચર્ચા કિતની જોર સે વહાં સે નિકલી કે સારે હિન્દુસ્તાન મેં ફેલી હૈ. ઓર કઈ લોગ વિરોધ મેં આયે દિગંબર લોગ તો ભી એક વિદ્વાન ને ચેલેન્જ મારા કે કાનજી સ્વામી કે ઇતને પ્રવચન છપ કરકે લાખો કી તાદાદ મેં બહાર આયે ક્યોંકે આત્મધર્મ મેં પ્રવચન આતે થે ઓર હર સાલ હર મહિને હજારો આત્મધર્મ બહાર જાતે થે તો લાખો કી તાદાદ મેં બહાર ગયે. આજ દિગંબર કે લોગ કિતને ભી વિરુદ્ધ મેં લેકિન એક વિદ્વાન એસા નહીં નિકલા કે જિસને તાત્વિક ભૂલ નિકાલી હો. એસા એક ભી વિદ્વાન નહીં નિકલા ઓર એસા એક ભી પ્રવચન નહીં નિકલા. એસા કરકે ચેલેન્જ મારા થા બહુત જોર સે બાત બહાર આઈ જબકિ સોનગઢ હિન્દુસ્તાન કે પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાન કે કોને મેં હૈ મધ્ય ભારત મેં નહીં હૈ એક કોને મેં હૈ ફિર ભી બાત ઇમ્ફાલ તક પહોંચી હૈ. ઇમ્ફાલ સે આતે થે લોગ ગુવાહાટી સે તો આતે હી થે ઇમ્ફાલ સે ભી આતે થે. એસે બાત હૈ मतलब बहुत बड़ी क्रांति हुई अध्यात्म जगत में, एक बहुत बड़ी क्रांति आई, तो दो राय तो हजारों लोग आने लगे थे, गांव गांव से, छोटे मोटे गांव से हजारों लोग आने लगे। गुरुदेव फर्स्ट टाइम यात्रा को निकले हैं, 1200 मुमुक्ष साथ में थे, कितने 1200 और गांव गांव से लोग आमंत्रण करने के लिए निकल जाए। जैसे बिहार मक्की हुआ कि बाहर निकलने वाले सोनगढ़ छोड़ करके कई लोग आ जाए गांव गांव से, हमारे यहाँ हमको 2-4-5 दिन का टाइम दीजिए, हमको 2-4-5 दिन का, हमारे वहाँ ठहरिए, हमारे वहाँ और गुरुदेव पधारे तो सैकड़ों लोग साथ में होते थे, सैकड़ों लोग, सबका खाने पीने रहन सहन की सब व्यवस्था बड़ा खर्चा के साथ करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं कि गुरुदेव को आमंत्रण कर दिया कि हम पधारो पधारो, ऐसा कुछ आसान बात नहीं थी, खर्चे की पूरी तैयारी रखनी पड़े, व्यवस्था की पूरी तैयारी रखनी पड़े, ऐसी बात नहीं। वो अकेले तो जाते नहीं, जाते तो सैकड़ों लोग साथ में हो जाते, एक साथ में सैकड़ों आते हैं और जब रुकते हैं तो बाहर से लोग सुनने को आ जाते हैं, अगल बगल के दूर से नजदीक से, ऐसी बात बनती थी। और अनजाने प्रदेश में भी जाते थे तो लोग बहुत बड़ा स्वागत करते थे, इतने पुण्यवंत थे, गांव गांव में स्वागत होता था बहुत अनएक्सपेक्टेड, जिसको बोले इतना पुण्य, पुण्य इतना था, बहुत प्रभावशाली भी थे, प्रभावशाली भी थे और पुण्यशाली भी थे। तीर्थंकर और जैसे कोई यात्रा निकली यहाँ से सम्मिश शिखर तक थे तो सब बात शेड्यूल से चलती थी, किस डेट में अर्ली मॉर्निंग कब निकलना, कहाँ गुरुदेव का खाना होना, कहाँ आराम होना, कहाँ आगे बढ़ना, कहीं कहाँ शाम का खाना होना, कहाँ रात्रि निवास होना, तो सब बात पायलट कार, पायलट कार एक व्यवस्था करने वाले के एक दिन दो दिन आगे चलते थे और सब अग्रिम व्यवस्था हुआ करते थे। ऐसे नहीं कि वहाँ जाने के बाद सब व्यवस्था करे, ऐसी बात उसमें नेमीचंद जी पाटनी ने बहुत काम किया, जो पहले किशनगढ़ में ठहरते थे, बाद में बहुत साल से वो आगरा में ठहरे, किशनगढ़ छोड़ कर गए, वो आदमी इंटेलिजेंट भी बहुत था और मैनेजमेंट पावर बहुत बढ़िया था इसका, मैनेजमेंट पावर। देखो जब अजमेर में थे, अजमेर के एक कॉटन मिल चलाते थे इनके चाचा और वो दोनों, तो उन जमाने में पैसे वाले लोग थे, फिर कुछ दिवाले निकल गया, फिर उन्होंने किशनगढ़ छोड़ करके आगरा में वो बसे, तो वहाँ अपना बिजनेस किया। अभी तो बहुत साल से रिटायर होकर के जयपुर में, जयपुर ग्रुप के मुख्य आदमी में वो आज भी है, लेकिन आज वो काफ़ी बुजुर्ग हो गया, कमज़ोर भी हो गया। तो तत्व और बहिर तत्व की अपेक्षाएं बताते हुए कहा। अपेक्षा ज्ञान एमनु केवू हतु एना ऊपर एक बोल छे। जब शुद्ध पर्याय बहिर तत्व है, ध्यान भी बहिर तत्व है, तब ध्रुव तत्व परम पारिणामिक भाव, ध्रुव तत्व माने परम पारिणामिक भाव कारण परमात्मा अंत तत्व है। इसके आगे ध्यान के पर्याय शुद्ध पर्याय वितराग पर्याय भी बहिर तत्व है। जब दो घर की बात चलती हो तो उसमें तीसरे घर की टांग डालने से घोटाला हो जाता है, मर्यादित बात है। ध्रुव तत्व अंत तत्व है तब शुद्ध पर्याय बहिर तत्व है। शुद्ध पर्याय को जब अंत तत्व कहते हैं यानी तब अशुद्ध पर्याय को बहिर तत्व कहते हैं, और अशुद्ध पर्याय को अंत तत्व कहते हैं तब कर्म को बहिर तत्व कहते हैं। वो जीव का परिणाम का अंदर का, तो कर्म का जो उदय आया प्रकृति में वो बहिर तत्व है, तो बाहर है आत्मा से। ये आत्मा के भीतर है, वो आत्मा के बाहर है। और कर्म को जब अंत तत्व कहें तब नो कर्म को बहिर तत्व कहते हैं। जैसे अंदर कर्म का उदय आया और बाहर में कोई निमित्त मिल गया तो नो कर्म है। ऐसे अपेक्षित जैसे अंदर में असाता का उदय आया और बाहर में रोग हुआ शरीर, तो ये कर्म का उदय अंत तत्व है और रोग होना बहिर तत्व है। ऐसे ऐसे अपेक्षित विवक्षा अनुसार सब घटा लेना और समझ सब समझ लेना इस प्रकार से। तो हम आनंद की मूर्ति हूँ
जी। कितना नंबर बोले?
9 नंबर का है।
लाइन से चलते
हैं? लाइन से प्रत्येक नहीं लेते, चुन चुन के लेते। अच्छा, मैं वर्तमान में ही मुक्त हूँ, आनंद की मूर्ति हूँ, आनंद से भरचक समुद्र ही हूँ। ऐसी दृष्टि हो तो फिर मोक्ष से भी प्रयोजन नहीं। मोक्ष हो तो हो, न हो तो भी क्या। पर्याय की इतनी गौणता ध्रुव दृष्टि में हो जाती है। वो ब्रैकेट में स्पष्टीकरण दिया है।
जी जी, लिए चलो इसे टिक करते हैं जैसे।
अच्छा, ब्रैकेट में वो स्पष्टीकरण दिया है कि पर्याय की इतनी गौणता ध्रुव दृष्टि में हो जाती है, क्योंकि मोक्ष पर्याय भी एक समय की है और पदार्थ तो इससे अनंत गुण समृद्ध है। जब वो मेरा स्वरूप है तो फिर इससे अनंत में भाग में जो है इसकी क्या अपेक्षा। ऐसा इसकी अपेक्षा नहीं रहती। जैसे जिसको शुद्ध पर्याय होती है उसको शुभ भाव की अपेक्षा नहीं होती। शुद्ध पर्याय वाले को शुभ भाव की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि जिसके पास हीरे के गोडाउन है वो फिर लोहा का स्क्रैप
माथा मारते
नहीं, उनका गोडाउन नहीं भरते, उसका संग्रह नहीं करते। वैसे मेरे को तो वर्तमान में ही आनंद आ रहा है, फिर पर्याय में तो मोक्ष होगा ही, ऐसी प्रतीत आ जाती है। मोक्ष की उपेक्षा होती है फिर भी प्रतीत में वो बात है कि मोक्ष तो होने वाला है ही, लेकिन मेरे को तो उससे भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि तो मेरा तो पेट भर गया है अभी।
वर्तमान में ही परिपूर्ण हूँ।
हाँ बस, बिना किसी के वर्तमान में ही पूर्ण हूँ ऐसा। तो वो द्रव दृष्टि की मुख्यता से वो बात चली है। कुछ करना कर्तृत्व बुद्धि से करना सो मरने बराबर है। मुझे शुरू से ही कुछ करने के भाव में मरने जैसा बोझा लगता था।
शुरू से ही से मतलब है? शुरू से ही से क्या बोलना
चाहते हैं? मुमुक्षु की भूमिका में भी ऐसा होता था, ये कहने का मतलब है। बहुत बोझा लगता था,
कृत्रिम प्रयास करने में बोझा लगता था ऐसा।
कुछ भी, हाँ कुछ कर्तृत्व बुद्धि से कुछ कार्य करने की बात आए, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो बोझा बोझा लगता। सहजता का बहुत अच्छा पहलू था। सुगानी जी के परिणमन में सहजता का पहलू बहुत अच्छा था। मुझे शुरू से ही कुछ करने के भाव में मरने जैसा बोझा लगता था। शुभ परिणाम होते तो मैं भट्टी में जल रहा हूं ऐसा लगता था। शुभ भाव में मंद कषाय में
सुबह भी प्रवचन में आया था ना वैसे।
समुद्र के जल में से एक बूंद उठकर बाहर रेत में पड़े तो उस बूंद को रेत चूसकर खत्म कर देगी, और यदि गर्म रेत हो तो बूंद तुरंत खत्म हो जाएगी। वैसे ही परिणाम बाहर की ओर जाए तो उसमें दुख ही दुख है। जितना परिणाम बाहर खींचता है जाता है उतनी आकुलता उसमें है। वो बात उनको शुरू से ही थी इनके पर, इसलिए वो कहीं स्वभाव में अटके नहीं। स्वभाव बहुत करते हुए भी वो अटके नहीं, इसका वही कारण कि उनको जो आत्म शांति चाहिए थी वो जब तक नहीं मिले वहां तक उनको चैन नहीं था। ये बहुत योग्यता की विशेषता, बड़ी विशेषता थी। मुमुक्षु की भूमिका में इस प्रकार की जो विशेषता थी एक बहुत बड़ी बात थी। बहुभाग मुमुक्षु है, कुछ भी साधन करते हैं कषाय मंद होते हैं,
संतुष्ट
हो जाते हैं, और इसका असंतोष बढ़ता रहा। ये बात हुई कि इसके असंतोष बढ़ता रहा।
इसका कारण उनकी योग्यता इसको करती।
वैसे एक प्रश्न पूछे, वैसे वो तो सत्संग में तो नहीं थे, तो ऐसी योग्यता डेवलप होने का क्या कारण है? कोई पहले का कोई संस्कार
नहीं, संस्कार नहीं था वो बात बिल्कुल। कारण कार्य का संबंध बिना के है,
योग्यता चीज है,
स्वयं की योग्यता है। और कारण, और कारण रूप से ये योग्यता थी।
द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से तो शुद्ध पर्याय भी परद्रव्य है, जब मेरे अस्तित्व में वो नहीं है, पर्याय क्षणिक है, वो त्रिकाली है। फिर राग की बात ही क्या, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा अर्थात द्रव्य स्वभाव में अहम भाव रूप श्रद्धा का परिणमन होना, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा का मतलब क्या, कि द्रव्य स्वभाव में अहम भाव रूप श्रद्धा का परिणमन हो जाना, कि ऐसी श्रद्धा होने पर पर्याय स्वतः शुद्ध होने लग जाती है। परंतु जो पर्याय शुद्ध होने लगी उसमें भी अहम भाव नहीं करेगी, नहीं करती, वो स्पष्टीकरण दिया है उतना,
उसमें वैसी लक्ष्य नहीं होता,
गौण रह जाता है, गौण रह जाती है, जो पर्याय शुद्ध होती है वो गौण रह जाती है। और अहम भाव त्रिकाली में होता है, अहम भाव कभी पर्याय में नहीं आता।
अवलंबन भी त्रिकाली,
क्यों कि अवलंबन त्रिकाली का है और पर्याय में अहम भाव है, वही तो पर्याय दृष्टि है, वही मिथ्या दृष्टि है। मैं त्रिकाली परमात्मा मौजूद हूँ, फिर मैं त्रिकाली होने के बावजूद भी एक समय की पर्याय में अहम भाव में क्यों करो? आगे कहेंगे कि पर्याय तो एक सेकंड में असंख्य टन ले लेती है, कितना फास्ट चलती है, ऐसे पर्याय के चक्कर में माथा डालने से माथा फूटेगा नहीं क्या? इतनी स्पीड से जैसे पंखा फरता है, उंगली रखो जो टूट जाएगी, माथा रखो तो फूट जाएगा, वो तो
इससे भी अनंत गुना अधिक
है। हाँ, अनंत गुना अधिक है, वो तो क्या है, वन आरपीएम होता है, पर मिनट होता है, वो तो एक सेकंड में असंख्य भाग में इतना फास्ट चलती है। परिणमन की कितनी गंभीरता करते थे, पर्याय में तीव्र अशुभ परिणाम हो, कितना तीव्र अशुभ परिणाम हो, या उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुद्ध पर्याय हो, मेरे में, मेरे मूल द्रव्य स्वभाव में, मेरे में मैंने कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं होता, क्योंकि वो सब मेरे से बाहर में होता है, मेरे में कुछ बगैर सुधार इससे नहीं होता है, मैं तो वैसा का वैसा हूं हमेशा के लिए। एक बात अच्छा किया है यहाँ 14 नंबर में कि ज्ञान का विषय है वो दृष्टि के विषय का प्रयोजन साधने जितना ही लक्ष्य में लेना ठीक है, बाकी उसका इससे अधिक प्रयोजन नहीं है। हाँ, वो बात थोड़ा गंभीर किया है कि ज्ञान का विषय बहुत है, ज्ञान का विषय अपना आत्मस्वरूप है, ज्ञान का विषय आत्मस्वरूप में गुण भेद है वो भी है, ज्ञान का विषय पर्याय भी है, पर्याय में शुद्ध पर्याय भी है, शुभाशुभ पर्याय भी है, शुभ किसको कहे अशुभ किसको कहे, शुद्ध पर्याय भी है, और ज्ञान का विषय अनेक प्रकार के निमित्त भी है पर्याय के, इतना सब ज्ञान का विषय है। तो कितना लक्ष्य में लेना, कितना लक्ष्य में लेना कि दृष्टि का विषय का प्रयोजन सधे उतना ही लक्ष्य में लेना, बाकी सब अप्रयोजन बुद्धि में डाल करके छोड़ देना। अपना जो लक्ष्य हो वही बात लो, बाकी छोड़ो, हमको कोई प्रयोजन नहीं है। और स्वलक्ष्य में तो थोड़ा आत्मकल्याण की भी बात आती है, इसमें तो दृष्टि का विषय जो त्रिकाली है उसी को ज्ञान का विषय बनाओ ना, बस बाकी का जो विषय है ज्ञान का अप्रयोजन होते, गुण भेद अप्रयोजन होते, पर्याय भेद अप्रयोजन होते, निमित्त के भेद अप्रयोजन जाओ। बाकी का वो मेरा प्रयोजन ही नहीं है इससे, हमको क्या लेना देना कोई कैसा भी हो। इस अप्रयोजन में क्या रहता है, उपेक्षा हो जाती है, तो कोई कैसा भी हो हमें क्या, कोई कैसा भी हो हमें क्या, ऐसा हम अखबार देखते हैं, कितनी याददाश्त रहती है, कल के अखबार में क्या न्यूज आया, इसका मतलब क्या हुआ, उन सब बातों से दुनिया भर के जो बातें जिसमें छपी हुई है इसमें हमारा प्रयोजन नहीं, इसलिए हम ध्यान नहीं देते, लक्ष्य में लेते नहीं वो बात को। ऐसे किसी बात को लक्ष्य में मत लियो, मत लो, एक दृष्टि का जो विषय है वो दृष्टि में आए वो प्रयोजनभूत विषय है, उसको हम साधे अवलंबे उतने ही ज्ञान का विषय, बाकी छोड़ उपेक्षा कर डालो। स्पष्टीकरण दिया है ब्रैकेट में कि प्रयोजन भूत स्वरूप में, प्रयोजन भूत स्वरूप के अलावा जो त्रिकाली प्रयोजन भूत स्वरूप है इसके अलावा जानने में आते हुए सभी ज्ञेयों में ज्ञान को अपना प्रयोजन भाषित नहीं होता, अप्रयोजन भूत भाषित होना चाहिए, प्रयोजन भाषित नहीं होना, हमको तो स्वरूप के सिवा कोई मतलब ही नहीं है, हम दूसरी दूसरी जगह क्यों माथा लगाए, बस
औरत भी क्या
है? ऐसी पकड़ थी, खुद की पकड़ ऐसी थी, फिर वो वहां जो सुनने वाले होते थे ना उनको लक्ष्य में लेकर के कुछ बातें की है, फिर सुन सुन करके मिल जाएगा ये दृष्टि झूठी है,
लगाते हैं
सुनने वाले कोई थप्पड़ मार दे, क्योंकि वहां एक क्रेज हो गया है संसद में, जो भी विद्वान आएगा, जो भी सुनाने वाला आएगा,
सब
कुछ लोग सुनने को जाएंगे। फ्री है ना, सब फ्री, अंदर में तो चलता नहीं। और काफी टाइम से रहते तो वो कई बातें पढ़ डाली है, कई ग्रंथे पढ़ डाले हैं। अब सुनाने वाले मिलते हैं तो थोड़ा दिलचस्पी रहती है। वो कहते हैं कि सुन सुन करके मिल जाएगा, ये दृष्टि झूठी है। इसको सुने तो मिल जाएगा, यहाँ से सुनेंगे तो मिल जाएगा, ये दृष्टि झूठी है। कार्य सिद्धि अपने पुरुषार्थ से, अंतर पुरुषार्थ से ही होगी। जब भी जीव करेगा तभी अंदर में पुरुषार्थ जाएगा, तब कार्य सिद्धि होने वाली है। तो सुनने का तो बाह्य प्रवृत्ति होगी, सुनना, सुनाना, पढ़ना, ये सभी बेकार है। सुनना, सुनाना, पढ़ना, ये सभी हमने ब्रैकेट भर दिया है, ब्रैकेट रख दिया है कि बहिर्मुख भाव कार्य सिद्धि के लिए हो तो भले हो। मानो को किसी को प्राथमिक अवस्था में होते हैं, ठीक है, हो तो भले हो, लेकिन उनका खेद होना चाहिए, निषेध आना चाहिए कि मैं अंतर्मुख कैसे कहूँ, ये कहाँ तक मैं ये बहिर्मुख प्रवृत्ति करते रहूंगा, इसका खेद होना चाहिए। उसी विषय पर एक दूसरी बात भी चल गई है, कि मैं पहले तो सब सुन लूं, अच्छी तरह सब बात सुन लूं चारों पड़खों से,
बाद में प्रयोग करूंगा,
पीछे पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा परिणाम स्वभाव की और रुचि को सूचित करता है। ऐसे पीछे वाले सदा पीछे ही रहेंगे, इसको तो बारी आने वाली नहीं है, क्योंकि अभिप्राय की भूल है उसमें।
इतना कड़क थे ना वचन, कोई ने जो इसने कहीं नहीं,
यहाँ तो वर्तमान इसी क्षण से पुरुषार्थ करने की बात है, पीछे से करने की बात नहीं, वर्तमान में करने की बात है।
सुनते ही चोट लगना
चाहिए, चोट लगना ठीक है, सुनते ही अंदर उतर जाना चाहिए, तो सीधा
पुरुषार्थ चालू हो जाना चाहिए। पीछे करूंगा, पीछे पहले सुन लो, थोड़ा और सुन लो, थोड़ा और सुन लो, और समझ लो, और सुन लो, सब अभिप्राय की भूल है, गड़बड़ है। पहले सुन लू, समझ लू, ये संकल्प विकल्प प्रतिबंध छूटेगा नहीं वहां से, संकल्प विकल्प प्रतिबंध नहीं मिटेगा वहां से।
भैया को थोड़ा गुड़ लेने के बाद और मन नहीं करता ना लेने का, थोड़ा लेने के बाद ध्यान में बैठने का मन करता नहीं, थोड़ा बोल लेने के बाद
और नहीं बोलो ना, सुनना सुनाना सभी बेकार की बात है।
ये
क्या चल गया, मैं तू यो या वह, मैं तू या वह, ये क्या चलता है ऐसा। ऐसे शांत और गंभीर थे लेकिन चर्चा लेते थे, घंटों तक धारा प्रवाह बोलते थे, उतना फोर्स था, बस आप सुनते ही जाओ। सुनने वाला कोई उछाल आ जाए ऐसा। थोड़ी परिणाम की चर्चा वो इस प्रकार से की है कि परिणाम अपना है तो भी उसको आप खुद ही पलट सकते नहीं, कर्ता बुद्धि से ऐसा परिणाम करें ऐसा परिणाम करें, इस तरह से परिणाम को कोई पलट सकते नहीं। परिणाम में कर्ता कर्म पने का धर्म है, इसलिए वो तो पलटेगा ही, परिणाम तो पलटते ही रहता है रहते हैं, वो तो पलटेगा तो सही। अब देखो दृष्टि बाहर झुकी है, जब दृष्टि बाहर झुकी है, दृष्टि का प्रसार अपने को छोड़कर बाहर में है, तो परिणाम भी बाहर से झुकेगा, और यदि दृष्टि अपने स्वभाव की ओर है तो परिणाम भी अपनी ओर झुकेगा, दोनों सहज है, दोनों सहज है। दृष्टि का कार्य क्या है, अपनत्व करने का है, जब बाहर की चीज में अपनत्व है तो परिणाम नहीं झुकेगा तो क्या करेगा, सहज झुकेगा। और स्वरूप में अपनत्व हुआ तो परिणाम सहज अंदर में झुकेगा, वो भी सहज है, दोनों बाजू सहज है। फिर ये करूं वो करूं ये करूं वो करूं ये बात कहां से आई आप, ऐसा कहते हैं
रुचि अनुयायी भी
है,
रुचि अनुयायी भी
सहज
सहज ही वैसे परिणाम इधर के
चलते हैं, ऐसे ही होने वाला
है। हम लोग के सत्य में कई बात आता ना किसी का कि हमारे पास ऐसा उदय है तो कैसा परिणाम करना, इतना वो लगता है कि ये परिणाम करना वो परिणाम, ये बोझ ही है और क्या है। जिधर का लक्ष्य होगा रुचि होगा उधर के परिणाम सहज होंगे, आप जाएंगे तो भी नहीं पलट सकते। यदि
नहीं परिणाम जो है वो भावना का अनुसरण करती है,
होता है ऐसे तो अभिप्राय को और अभिप्राय के बाद दृष्टि को अनुसरण करता है, अभिप्राय और श्रद्धा को सीधा संबंध है। अपने को तो परिणाम भी पलटाना नहीं है, मैं तो अपरिणामी हूँ,
लेवल ही अलग है,
मैं तो अपरिणामी हूँ, उनको तो कोई परिणाम को पलटाना नहीं, मैं अपरिणामी हूँ, पर पलटना मेरा धर्म ही नहीं है, वो तो पर्याय का धर्म है, उसकी वो जाने, मेरा धर्म नहीं है, फिर मैं क्यों माथा लगाऊं, वो तो परिणाम का धर्म है। दृष्टि की अपेक्षा से शुद्ध परिणाम भी मेरे से अलग ही है, ज्ञान उसको अपना अंश जान लेता है, वो बात ज्ञान की अपेक्षा से साथ में रख दी, कोई ऊंचे नहीं चढ़ जाए, इसलिए ये दृष्टि की अपेक्षा से तो शुद्ध परिणाम भी मेरे से अलग है, ज्ञान उसको अपना अंश जान लेता है, ठीक है, अपेक्षा से मेरे में होते। अब क्या है कि दृष्टि जो है वो अस्तित्व को ग्रहण करती है, तो दृष्टि का विषय रूप जो अस्तित्व है वो त्रिकाली में समाप्त होता है, अपना अस्तित्व ही त्रिकाली में समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान अस्तित्व को देखता है तो त्रिकाली और वर्तमान दोनों को मिलकर के जो पूरा पदार्थ है उसमें अपना अस्तित्व को समाप्त करता है, इससे बाहर कहीं दूसरे पदार्थ में, शरीर में और दूसरी चीजों में अपना अस्तित्व को ज्ञान ग्रहण नहीं करता। तो दोनों का अस्तित्व का विषय है, इसकी मर्यादा अलग अलग है, इसलिए कभी ज्ञानी दृष्टि से की प्रधानता से बात करते हैं तो अलग बात होती है, ज्ञान की प्रधानता से बात करते हैं तो अलग बात होती है, क्योंकि दोनों के अस्तित्व की मर्यादा अलग अलग है। इसलिए कई लोगों को कोई कुछ बात समझ में नहीं आती या उल्टी पुल्टी भी समझ में आ जाती है, और दोनों का परिणाम एक साथ रहता है, ऐसा नहीं कि दृष्टि का होता है तब ज्ञान का नहीं होता, ज्ञान का होता है तब दृष्टि का नहीं, ऐसा नहीं है। दृष्टि तो अपने अपना काम त्रिकाली में अपने तो करने का करती है, और कुछ देखती नहीं, और कुछ देखते नहीं, क्योंकि वो एक नशा जैसी चीज है, वो अपने नशे में चलती है। ज्ञान है वो सब कुछ जानता हुआ कॉम्प्रोमाइज करता है कि निमित्त ऐसे हैं, वो निमित्त ऐसे हैं, हमको सत्संग में जाना है, कुसंग में नहीं जाना है, हाँ? ज्ञान निमित्त का भी विवेक करेगा, और वो यथार्थ है, ज्ञान पर्याय का भी विवेक करेगा, इसमें दुख होता है, इसमें सुख होता है, इसके पीछे अभिप्राय वो है, इसके पीछे श्रद्धा वो है, उनके वो पहलू है, उनके वो पहलू है, और ज्ञान त्रिकाली को भी जानेगा, श्रद्धा को भी जानेगा, सब कुछ जानता हुआ और कोऑर्डिनेशन करता हुआ वो भी अपने साधना को साधता साधता केवल ज्ञान है। तवदेय में सम्यक दृष्टि को दुख का वेदन होता है, असाता के उदय में दुख का वेदन होता है, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। फिर से सम्यक दृष्टि को असाता के उदय में दुख का वेदन होता है, कितना जितना परिणाम खींचता है उतना अंश में, लेकिन अपने स्वभाव की अधिकता के वेदन में उस वेदन की गौणता हो जाती है। ज्ञान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, दो दो भाग चलता है, एक परिणाम में शांति का भी और अशांति का भी, दोनों चलता है,
दोनों मतलब साथ में।
हाँ,
शांति का वैसी तो मुख्य पर एक परिणति तौर पे चलता है, और जितना अंश में जुड़ान होता है उतना अंश में वो संबंधित आकुलता होती है।
तो दोनों तो विदिन दोनों
का,
हाँ तो वो गौण रूप से आता है,
लेकिन होता
है, लेकिन होता है दोनों। नान में शांति के वेदन के साथ साथ दुख का वेदन आता है, परंतु यह दुख वेदन मुख्य नहीं होता। नानी को अपने स्वभाव की ही अधिकता रहती है, अपने स्वभाव की अधिकता कभी नहीं छोड़ती, असाता के उदय में भी।
ये दुख का जो वेदन होता है इससे तो और ज्यादा वो शांति के वेदन की तरफ जाते
हैं। हाँ, हाँ, वो तो है। अभी अज्ञानी की बात करते हैं कि अज्ञानी उत्पाद वे के साथ साथ चला जाता है, उत्पाद वे जो परिणाम के साथ वो बहता है अपनत्व करके, पर्याय दृष्टि होने से स्पष्टीकरण दिया है, पर्याय दृष्टि होने से परिणाम का उत्पाद वे होने पर स्वयं का उत्पाद वे अनुभवता है, मुझे ऐसा हुआ। परंतु ज्ञानी ने नित्य में अपना अस्तित्व स्थापित किया है, नित्य द्रव्य में, अतः वह उत्पाद वे के साथ नहीं चला जाता, किंतु उत्पाद वे को जान लेता है, अलग रह करके वो उत्पाद वे को जान लेता है।
एक बार लिखा कि दुख का वेदन, और एक बार लिखा कि जान लेता है,
दोनों बात है, वेदन भी करता है और जान भी लेता है, दोनों पहलू है इनके परिणाम में। ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से, ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से, परंतु अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से ऐसा दिखता है कि मानो पर्याय बाहर से आती हो, इसलिए अज्ञानी को पर से ज्ञान होता है ऐसा भ्रम हो जाता है। ये देखो, सुना तो सुनने से ज्ञान हुआ, पढ़ा तो पढ़ने से ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान के पर्याय अंदर से आई है, बाहर से कहीं से नहीं आई, कोई ग्रंथ में से, कोई शब्द में से ज्ञान के पर्याय आती है ऐसा तो नहीं हुआ। अनंत तीर्थंकर हो गए, लेकिन अपने तो गुरुदेव श्री ही सबसे अधिक है, एक तीर्थंकर से नहीं, अनंत तीर्थंकर से। जैसे कोई अपने को धन की जरूरत हो और कोई लखपति अपनी जरूरत अनुसार धन दे देवे, तो लखपति अपने लिए तो अन्य सभी करोड़पति से भी अधिक है, ऐसे ही गुरुदेव श्री अपने लिए तो तीर्थंकर से भी अधिक है, अपना हित तो इनसे हुआ है, तो क्या वो निमित्त की प्रधानता नहीं होगी?
निमित्त का निमित्त के स्थान में विवेक।
हाँ, और मेरे लिए तो वो अनंत तीर्थंकर से भी ठीक है। ये गुरुदेव के भावि तीर्थंकर की प्रतिमा की स्थापना किया हमने, तो सारे हिंदुस्तान के दिगंबर संप्रदाय वाले और गुरुदेव के मुख्य मुख्य पंडित लोग सब विरोध में आ गए।
गुरुदेव के मुख्य पंडित लोग
जयपुर वाले सब मेजर परसेंट वो लोग पंडितों में। हुकुमचंद जी ने तो बहुत विरोध जगाया, सारे दिगंबर समाज को उकसाया उन्होंने। उन्होंने बस विरोध चालू किया अपने पेपरों में, पेपरबाजी बहुत किया हिंदुस्तान में, किसानगढ़ में ये हो रहा है उनका विरोध कीजिए और ये प्रतिष्ठा को बंद करा दीजिए। तो हमको मालूम हो गया था ये केस होने वाला है, कोर्ट केस होने वाला है, तो हमने सभी कोर्टों में, सभी कोर्ट में क्या है कि सोनगढ़ में पहली कोर्ट सीहोर की लगती है, इसके ऊपर वाली भावनगर की लगती है, स्थानीय कोर्ट सीहोर की लगती है क्योंकि सोनगढ़ में कोई न्यायालय नहीं है, सीहोर के अंदर में वो तालुका है उसका, फिर डिस्ट्रिक्ट में भावनगर लगता है और स्टेट में अहमदाबाद लगता है, तो जुरिडिक्शन तो स्टेट का कहीं भी हो सकता है। तो तीनों जगह हमें हमारे वकीलों ने अपॉइंटमेंट दे रखे थे कि हमारे फंक्शन के विरुद्ध में कोई भी कागजात कोई भी व्यक्ति की ओर से कोर्ट में आ जाए तो आपको अपना वकीलातनामा देना है कि मैं खड़ा हूँ और आपको हमको सुनना पड़ेगा, एक्स पार्टी कोई जजमेंट नहीं हो जाए। तो पहले भावनगर में हुआ, अहमदाबाद का एक एक्स जस्टिस था दिगंबर, उसने वो केस दायर कर दिया, उसने प्रिपेयर किया, उसने भावनगर के कोर्ट में एंट्री किया। हम लोग तो सोनगढ़ थे क्योंकि हम तो प्रतिष्ठा के काम में लगे हुए थे महीना डेढ़ महीने, तो हमारा वकील ने 5 घंटा टक्कर लिया उससे। और शाम को जजमेंट मिला उनके उन लोगों के अगेंस्ट में,
अगेंस्ट
हार गए भावनगर में। वो जजमेंट लेकर के वो सीधे बाई कार अहमदाबाद पहुंचे, हमको मैसेज आया मिला, हम रात को इधर आ जाते थे, अप डाउन करते थे, सुबह चले जाते थे सोनगढ़, रात को आ जाते थे। तो रात को पता चला कि हमारे वकील का फोन आया था, तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो ऐसे ही हमने 5 घंटा लड़ाई किया है, उन लोगों को हराया है और वो लोग अहमदाबाद गए हैं, आप अहमदाबाद अपने वकील से फोन कर दीजिए और आगे की तैयारी कर लीजिए। तुम बोल के फोन तो हम अभी कर देते हैं, लेकिन कल वो लोग एंट्री करेंगे, हमारा वकील भी खड़ा हो जाएगा, हमको भी जाना है, आप साथ में चलिए। उनके रात्रि को 11 बजा है, मेरा कल का अपॉइंटमेंट्स जो है कोर्ट में, जो मेरी मुदत डेट्स हैं वो डेट वगैरह का क्या है, तो आप डायरी खोल करके देख लीजिए, अगर आप आ सकते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप लोगों ने हराया है ना। उन्होंने ठीक है मैं आऊँगा, तो फिर आपको सुबह 4 बजे गाड़ी लेने को आ जाएगी और हमको 4 बजे यहाँ से स्टार्ट होना है, सुबह 8 बजे हम अहमदाबाद पहुँचेंगे, वकील के साथ तैयारी करेंगे, 11 बजे कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे। उठाए 4 बजे उसको, हम भी 3 बजे उठ करके तैयार होकर के 4 बजे रवाना होंगे। वहाँ हमने इन लोगों को अच्छी तरह भिड़ा दिया। वहाँ भी वो लोग हार गए। और हमने जो वकील को रोका था तो हम हमारी जो टीम थी उसमें एक बॉम्बे के सॉलिसिटर थे, बहन थे, जो बॉम्बे में प्रैक्टिस करते थे, मोमुक्षु बहन थे, उनको हमने साथ में लिया था। तो उनको गुजरात के एडवोकेट जनरल जो होते हैं उनसे परिचय था, उन लोगों ने कोई केस में साथ में काम किया था बॉम्बे में। तो वो कोर्ट में जा रही थी तो उसने उसके चैम्बर पे नाम पढ़ा, करे ये तो वो एडवोकेट जनरल है जो हम लोगों ने साथ में काम किया था। वो अंदर मिलने को गई, चाय पानी पिया, बात बात में वो बोला आप क्यों आई है, अब गुजरात हाई कोर्ट में क्यों आई। तो बोले कि ऐसा एक केस हुआ है और हम लोग लड़ रहे हैं। तो क्या ठीक है, कोई हमारा काम हो तो बता देना। उसने शिष्टाचार से बात किया, तो बोले ठीक है मैं देखती हूँ। शाम को जब हम लोग कोर्ट में से लौट रहे थे तो उसने हमारे वकील को पूछा कि आज मैं एडवोकेट जनरल से मिली हूँ और उसने बोला है कि कोई काम मेरा हो तो बता दीजिए। तो पुलिस का काम हो तो अपन बता सकते हैं। तो बोला कि अपन उसको अपॉइंट कर सकते हैं क्या इस केस में मेरे साथ, वो भी लड़े आपका केस को, तो एक बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन वी आर टू लेट, हमको 15 दिन पहले बोलना पड़ता है, ऐसा वो केस में वो उपस्थित नहीं होते हैं, बहुत काम उसको रहता है। 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन, 1 महीना पहले उनको बताना पड़ता है कि आप हमारे काम के साथ में लेंगे कि नहीं लेंगे। तो बोला कि वो आपको चिंता नहीं करनी है, अब वो बोलो कि अब उनको रोकना है या नहीं रोकना है। तो फिर मैंने वो सल्ला मैंने इसका नाम था सल्ला मैंने मैंने बोला सल्ला मैंने वो आपको इसको नहीं पूछना है, ये बात हमको पूछना है, वो डिसीजन हम लेंगे, वकील नहीं लेंगे, उसको अपॉइंट करना है, जाओ उसके चैम्बर में अभी चले जाओ और अपॉइंटमेंट लेके आओ। हो गई सीधी, हम तो कंपाउंड में ही थे, हाईकोर्ट के कंपाउंड में ही चल रहे थे, तो सीधी गई, ये तो वो निकल गए थे। उसने वहाँ से इसका घर का टेलीफोन लिया पियोन से, यहाँ से बात किया कि सब हम लोग आपको अपॉइंट करना चाहते हैं हमारे केस में, क्या करें। बोले कि अभी एक मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है मेरा एक केस का मेरे वकील के साथ, तो आप करीब 8 बजे मेरे बंगले पे आ जाइए, ये मेरा एड्रेस है, मैं आपको वहाँ से कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। क्योंकि तो शाम को 5:30 बजा था, हमारे पास तो काफ़ी टाइम था। हम लोग घर गए, खाना खाए, फ्रेश फ्रेश होकर के जिसको नाना वगैरह था सब करके फिर गाड़ी ले लिया इसके बंगले पे। हमारा वकील भी साथ था, भावनगर का, अहमदाबाद का, हम लोग भी, हमारी टीम भी साथ थी, 2 गाड़ी लेकर के हम गए। उनके लोग बहुत सीरियस है। फिर सारा केस हमने डिस्कस किया, वकील सब सुनते रहे। वो लोग तो क्या क्या इंफेरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में बात करते थे एडवोकेट जनरल से, वो तो बड़ा आदमी होता है, हम बिल्कुल निर्भीक, फटाफट फटाफट उनको सब बात, जितना वो पॉइंट बोले उनको बराबर बताते थे कि ठीक है चलो अच्छा हो गया, हूँ कि चलो हम आपका किफ़ना तैयार करेंगे, और ये लोग जो जिस बेंच में आपका चलता है केस, वो लोग मेरे से जूनियर लोग हैं, तो आपका केस तो अच्छी तरह से हम जीत जाएंगे। हम बोले कि आप वो कैसे कह सकते हैं, तो फिर बस हम केस को देख लेते हैं, फिर ऐसा निश्चय करके हम एंट्री लेते हैं कि एक किस हमको जीतना ही है, ऐसा हमको हमारा निश्चय हो गया है तो हम जीत करके बाहर आएंगे। हरा दिया इन लोगों को। एक हफ्ते में हमने वकीलों को 40,000 दिया, भावनगर के वकीलों को, दो भावनगर के थे, दो अहमदाबाद के, अहमदाबाद के और भी एक को ज्वाइन किया था, तीन अहमदाबाद के थे। एडवोकेट जनरल ने क्या किया कि इसी वकील को भी शामिल करिए, तो उनसे मैं जैसा कहता हूँ उनसे वो केस तैयार कराओ। पांच वकील थे, पांच वकील में हमने 40,000 बांटे। वो तो बात वहां से निकली कि गुरुदेव को भावी तीर्थंकर है, इसलिए भावी तीर्थंकर के रूप में स्थापित किए तो भी सारा हिंदुस्तान हिल गया। तो ये तो कहते कि अनंत तीर्थंकर से अधिक है मेरे लिए, तो एक दो चार नहीं, जितने भी अभी तक हुए और जिन जिन तीर्थंकरों के समूह शरण में हमारा जाना हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, और गुरुदेव के साथ हमारा काम हो गया। वो फैक्ट के रूप में, फैक्ट और फिगर्स के रूप में बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन। ये फैक्ट है कि हम अनंत तीर्थंकरों के समोसरण में गए, वहां हमने हमारा काम नहीं हुआ, देव की सभा में हमारा काम हो गया, इसलिए वो हमारे लिए अनंत तीर्थंकर से अधिक है। तो